يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نا اے ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہ خیانت کرو آپس میں امانتوں میں، اور جبکہ تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ خیانت صحیح چیز نہیں. تو وہ خیانت ہوتی کیا ہے؟ بددیانتی کو کہتے ہیں نا اصل میں خیانت، کہ ہم جب کہتے ہیں خا واؤ نون سے ہے، کمی کر دینا، دھوکہ دینا. اور امانت کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ حق جو کسی بھی دوسرے کا ہے اس کو ادا کر دینا، وہ امانت ہے. امانت ہے کسی کے بھروسے پر کسی کو کوئی چیز دی جائے تو وہ اس کے پاس امانت ہے، چاہے وہ کوئی ذمہ داری ہے یا کوئی مال ہے، کوئی چیز ہے، کوئی عہدہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو ٹرسٹ کر کے اس کو دی گئی ہے، اس کو ہینڈ اوور کی گئی ہے، وہ امانت ہے. دیکھیں نا، کسی نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا اور آپ کو کوئی عہدہ دیا یا کوئی ذمہ داری دے دی، بھائی دیکھو آپ کی ذمہ داری آپ ہی، وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے آپ کو دے رہا ہے نا، یہ آپ امانت ہے. سمجھ آئے؟ یہ امانتیں ہیں کہ آپ گروپ انچارج ہیں یا آپ کو ٹیچر ہیں یا آپ کوئی وزیر ہیں یا آپ کوئی مشیر ہیں یا آپ کوئی اکاؤنٹنٹ ہیں یا آپ کوئی سیکٹری ہیں یا کوئی بھی جو بھی عہدہ یا جو بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. ایون اگر آپ ایک ماں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کوئی چیز لگائی ہے، وہ ایک امانت ہے. اور امانتوں کا سوال ہونا ہے. اب جو اس بھروسے کو توڑ دے گا نا، اس نے خیانت کی. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کسی کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوائی، آپ نے اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے رکھوائی نا، یہ بھی میری چیز کا خیال رکھے گا. اس نے چیز کو استعمال کیا، اس مثلا وہ کوئی ہار ہے اس کو پہنا، یا کوئی سوٹ ہے، یا کوئی گاڑی ہے، اس نے اس کو اتنا مس یوز کیا اور اس نے یہ سوچا کہ تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو کون سا پتا چلنا ہے؟ یہ خیانت ہے. آپس میں بھی نہیں امانتوں میں خیانت کرنی، اور اللہ رسول کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں کرنی بددیانتی. یہ بددیانتی کیا ہے؟ اور بددیانتی یہاں پہ یہ ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لے، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دے دی، یہ بڑی قیمتی چیز عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالی سے اس نے ایک طرح سے عہد کر لیا کلمہ پڑھ کے کہ میں یہ زندگی اللہ کے لیے گزاروں گی، اس کو الہ سمجھ کے گزاروں گی، اور نبی کے طریقے پہ چلوں گی، ان کو میں نے اپنا رسول مان لیا. مگر وہ کرتا اس سے الٹ ہے، اس سے الٹ کرتا ہے، یہ خیانت ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، آیا نا کہ رسول کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، یا ان کی اطاعت ہی نہیں کرنی تو وہ بددیانتی ہے ان کے ساتھ نا. اللہ تعالیٰ کا دین، اس میں لوگ اس کے اوپر لوگ حرف اٹھا رہے ہیں، اس کو لوگ بدنام کر رہے ہیں، اس کے اوپر لوگ باتیں بنا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہ ہو. ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن ہم اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے، ہمیں کیا، اللہ کے دین پہ کر رہے ہیں نا، ہمیں تو نہیں کچھ کہہ رہا. بددیانتی ہے اس کے ساتھ نا، وفاداری تو نہیں ہے. وفاداری ہے امانت، اور بے وفائی ہے خیانت. اللہ کا حق ادا کرنا امانت داری، رسول کا حق ادا کرنا امانت داری. اللہ کا حق کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کا حق تو نہیں ادا ہو سکتا، مطلب ہے کہ جو حقوق اس نے ہمارے اوپر رکھے ہیں، جو اس نے فرائض ہمارے اوپر رکھے، جو اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے، یہ سب امانت ہے. ہم نے اس کو علاج مانا ہے، تو اب ان کے اندر خیانت نہ کی جائے. نماز میں خیانت کیا ہے؟ نماز کو تیزی تیزی سے پڑھنا. وضو میں خیانت کیا ہے؟ پورے اعضاء ہی نہ دھونا. تو یہ سب چیزیں خیانت میں آ جاتی ہیں. چاہے آپ جو اللہ تعالیٰ نے عبادات رکھی ہیں یا اس کے احکامات ہیں، ان کو صحیح ادا نہ کرنا، یہ خیانت ہو جائے گی. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانت ادا کرو. जो अमानत है उसके सुपुर्द करो। ये सूरह निसा में हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है। और मुनाफे की जो निशानियां बताई हैं उनमें एक निशानी तीन निशानियों में से क्या है, अमानत में खयानत करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया अबू दाऊद और तिर्मिजी में है कि तुम्हारे पास जो कोई अमानत रखे उसकी अमानत अदा करो, जो तुमसे खयानत करे उसके साथ तुमने नहीं खयानत करनी कि नहीं हम भी इसके साथ खयानत करेंगे, ये भी तो खयानत करता है। नहीं, और राज भी अमानते हैं। क्या आपके पास कोई अपना राज रखवाता है, वो भी एक अमानत है कि आप उसको उस राज को किसी और को ना बताएं, ये भी अमानत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों पे एक धोखे का दौर आने वाला है, जब सच्चे झूठे हो जाएंगे और झूठे सच्चे कहलाएंगे, अमानतदार बेईमान और बेईमान अमानतदार बन जाएंगे। तुम अल्लाह रसूल के साथ बदतियानती ना करना। कोई भी अमानत आपके सुपुर्द है ना, अगर चाहे वो फिजिकल सूरत में है, अथॉरिटी की सूरत में है, राज की सूरत में है, किसी या कोई मशवरा ही आपसे लेता है ना, वो भी एक अमानत है, तो उस अमानत को अदा कीजिए, उसमें खयानत ना करें। अब किसी ने आपसे पूछा या रसूल्ला कयामत कब आएगी, आपने फरमाया जब अमानतें जाया होने लगेंगी, नाअहल लोग हुक्मरान बन जाएंगे, तब कयामत का इंतजार करना। नाअहल को ओहदे पे बिठाना भी खयानत है, ये ओहदा ये उस लायक नहीं था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास दयानत नहीं उसके पास ईमान नहीं, और जो अहद पूरा नहीं करता उसके पास कोई दीन नहीं है। यानी अमानतदारी जिसमें नहीं है ना उसमें कोई ईमान नहीं है। हर खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाया करते थे, ऑलमोस्ट हर खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। किसी ने पूछा मोमिन कंजूस हो सकता है, फरमाया कंजूस हो सकता है, हाँ हो सकता है, बुजदिल हो सकता है, फरमाया बुजदिल हो सकता है, कहा झूठा हो सकता है, फरमाया नहीं झूठा नहीं हो सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि मोमिन की तखलीक हर तरह की हो सकती है, यानी वो फराख दिल भी हो सकता है, कंजूस भी हो सकता है, बहादुर भी हो सकता है, बुजदिल भी हो सकता है, हर तरह का हो सकता है, मगर झूठ और बददियानती ये किसी मोमिन में नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये दो चीजें। अब देख लें कि बददियानती का हाल क्या है और झूठ का हाल क्या है, हम कितनी बददियानती करते हैं अल्लाह रसूल के हकूक में भी और इंसानों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ भी। तो फरमाया ला तखून, मत खयानत करो। इसके बारे में दो वाकयात भी आते हैं, एक तो अबू लुबाबा का वाक्य आता है जिन्होंने बनू कुरैजा, अगर आपने सीरत पढ़ी है तो बनू कुरैजा के यहूदियों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था, तो उन्होंने पूछा कि यानी उनसे पूछा अबू लुबाबा से कि हमारे बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फैसला करने वाले हैं ना, तो उन्होंने अपनी गर्दन की तरफ ऐसे हाथ करके बता दिया कि तुम्हारे गले कटने वाले हैं। तो ये फिर बाद में उनको एहसास हुआ कि मैंने आपका राज बता दिया है और ये खयानत हो गई, मैंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत कर दी। तो जब उनको ये एहसास हुआ तो आए और मस्जिद नबी में एक सतून के साथ अपने आप को बांध लिया, और अभी भी मस्जिद नबी में ये सतून है, जिस जो अबू लुबाबा का सुतून है ना, ये अभी भी वहां पे है। उस सुतून के साथ अपने आप को बांध लिया था और 9 दिन इसी हालत में रहे थे कि कुछ खाया पिया नहीं था, तो गशी आ गई, बेहोश होके गिर पड़े कि मैंने नहीं अपने आप को खोलना जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मुझे आगे खोलें और जब तक कि मेरी नहीं बख्शिश हो जाए, क्योंकि मैं उस वक्त तक एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा चाहे मैं मर ही जाऊं। कहते हैं कि मैंने इतना उनको एहसास हुआ ना कि मैंने अल्लाह रसूल की खयानत कर दी, मैंने उनका राज दे दिया। तो उसके बाद फिर आयात उतरी और लोगों ने उनको जाकर खुशखबरी दी, फिर भी फरमाने लगे नहीं वल्लाही मैं कोई मुझे ना खोले, मैंने कि अपने आप को किसी से भी नहीं खुलवाऊंगा वल्लाही, सिवाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके खुद मुझे खोले। तो फिर आपने आके उनको खोला था, फिर इतने खुश हुए थे, फरमाया मैं अपना सारा माल सदका करूंगा। आपने बोला नहीं सिर्फ एक तहाई सिर्फ दे दो बस काफी है। इसी तरह आपको हातिम बिन अबी बलता का पता होगा कि जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, जब जंग के लिए फतेह मक्का के लिए, तो इन्होंने आपका राज बता दिया था वहां पे, तो उसके बाद इनको बहुत
एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, और अल्लाह ताला ने फिर इनको माफ कर दिया था। तो यानी ये कुछ खयानतों का जिक्र इस आयत के जिमन में आप तफासीर में देख सकते हैं। तो अमानतों का ख्याल रखना है, यानी फर्जों को खराब नहीं करना, उनको उनमें कोताही नहीं करनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ना छोड़ें, उनकी नाफरमानी ना करें। और हजरत उरवा बिन जुबैर कहते हैं कि किसी के सामने उसके हक का इजहार करना और दर पर्दा उसके उलट करना, यानी कि सामने है तो आप कुछ कह रहे हैं और पीछे है तो कुछ और कह रहे हैं, ये भी अपने नफ्स के साथ खयानत है, ये भी अमानत को जाया करना है। तो इसलिए अमानतों का पास रखना ये एक मोमिन का तरीका होता है। वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, और जान लो कि तुम्हारी माल और तुम्हारी औलादें फितना है। फितना ही वो वाला उर्दू वाला फितना नहीं कि कोई किसी को कह रहा है तुम बहुत फितना परदाज हो, बहुत मतलब फसादी हो, वो वाला फितना नहीं है। ये फितना क्या है? इम्तिहान है, ये तुम्हारे इम्तिहान के पर्चे हैं, और बड़े मुश्किल पर्चे हैं, ये बड़े ही मुश्किल पर्चे हैं, बहुत मुश्किल टेस्ट है। यानी क्या मतलब हुआ कि ये तुम्हारे इम्तिहान है? मतलब ये है कि ये वो दो चीजें हैं जो इंसानों के पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं, इसको रोक लेती हैं अल्लाह के रास्ते पे चलने से। ये वो चीजें हैं जो इंसान को रोक लेती हैं अल्लाह के हुक्मों को मानने से, अल्लाह रसूल की वफादारी से, दीन पे चलने से। इनकी अट्रैक्शन, या इनके अंदर इतना अपना वक्त स्पेंड कर लेना, इनकी ख्वाहिशात, मसलन औलाद है तो उसकी ख्वाहिशात पूरी करना, या उसमें इतना बढ़ जाना कि उसमें अल्लाह के हुक्म टूट रहे हैं तो टूट रहे हैं, या माल के लिए इस कदर दीवाना वार इंसान काम करने लगे माल को हासिल करने के लिए कि उसमें ना वो उसको सोच रहा है कि नमाज का वक्त क्या है, या अल्लाह का हुक्म क्या है, या ये हलाल तरीका है, या ये हराम तरीका है, या क्या, ये इम्तिहान है ना। और इस इम्तिहान के जरिए अल्लाह ताला आजमा लेता है कि कौन है जो मेरा शुक्र गुजार है और कौन है जो ना शुक्र है, कौन है जो मेरा ओबीडियंट है, कौन है जो डिसोबीडियंट है, कौन है जो ये पा के भी मुझे याद रखता है। क्योंकि बड़ी जल्दी माल आता है, इंसान बड़ी जल्दी अल्लाह को भूल जाता है। ये इतना बड़ा फितना है। आप देखेंगे जितनी लग्जरी ज्यादा होती है ना, इंसान को वैसे ही सो ही जाता है तो एसी चला हुआ है तो उठा ही नहीं जाता उसे फजर पे भी। जाहिर है माल के बखेड़े भी बहुत है, ये इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई भी है, मेरे इंप्लॉयज इतने हैं, उनको भी तो देखना पड़ता है, उनको भी। ये देखें जितनी एक्सपैंड होती जाती है आपकी एम्पायर, जितना आपके माल बढ़ता जाता है उतनी उसके साथ मसरूफियत भी बढ़ती है। फिर उसके बाद वक्त निकालना अल्लाह के लिए, ये तो बड़ा मुश्किल है, हम तो इतने बिजी हैं। एक बंदा है, वो सुबह मजदूरी करने जाता है, शाम को आता है, उसके पास कुछ है ही नहीं, उसने क्या करना? बिस्तर है उसका, उसको क्या सजाएगा, संवारेगा, सुथरा करेगा, बस जो है वो एक पहन लिया, एक उसने रोटी खानी है और उसने एक सालन खाना है, उसके तो बखेड़े ज्यादा नहीं। जिनके बड़े बड़े किचन्स हैं, जिनमें एपेटाइजर भी बनना है, डिजर्ट भी बनना है, फिर दो मेन कोर्स हैं और फिर चार साइड डिशेज हैं, और क्या है, उनके तो बखेड़े बहुत हो गए ना। जिनकी अलमारियों में इतना कपड़ा है, उन्होंने और भी कपड़ा खरीदना है, माल जो इतना है, इसको भी इस्तेमाल करने के लिए, इसको दिखाने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, इनको देखेगा कौन? इसके लिए भी मैं पार्टीज रखूंगी तो कहीं जाऊंगी तो लोगों को दिखाऊंगी ना। ये आप देखें माल से आगे कितने, इसके ये बच्चे कितने देता है ना। फिर मैं पार्लर पे जाऊंगी, फिर मैं तैयार भी होंगी, फिर उसको दिखाना भी तो है मैंने लोगों को। अब बन समर के घर में तो नहीं घुस के ताला लगा के बैठ सकती, कहीं तो घूमू फिरूंगी, कहीं इसका डिस्प्ले भी तो हो इस माल का, कहीं दिखावा भी तो चाहिए। तो माल के साथ बड़ी चीजें आती हैं, बहुत सारे बच्चे देता है ये, इनमें शो ऑफ भी है, धोखेबाजी भी है, दूसरों को हकीर समझना, तकबर, रियाकारी, और हलाल हराम की तमीज खत्म हो जाना, इसमें मशगूल हो जाना, गफलत, बहुत सारी चीजें आती माल के साथ। तो ये इंसान के लिए नेमत भी है, अगर इंसान इसको नेमत समझ के और झुका रहे अल्लाह के सामने और इसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहे और ये उसको गाफिल ना करे अल्लाह से और ज्यादा अल्लाह के आगे झुक जाए, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की भी मिसालें। ये नहीं आप कह सकते माल बुरा है, माल में बुराई नहीं है, मगर माल के साथ फितने बहुत है इसके, यानी टेस्ट्स बहुत है इसके, पेपर बहुत ज्यादा है। आप जैसे एक मसलन है कि पीएचडी के पेपर बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल होंगे, नर्सरी के पेपर जरा आसान है। हाँ इसी तरह औलाद फितना है, कैसे औलाद फितना कैसे भी, ये नेमत भी है, ये सदका जारिया भी बन सकती, माल भी तो सदका जारिया बन सकता है, मर भी गए तो पीछे से इसके समरात मिलते रहेंगे, लेकिन औलाद कब है जब ये वाकई ये इम्तिहान है कि अल्लाह देख लेता है इस औलाद को दे के हमें कि अब इनकी मोहब्बत में फंस के कहीं अल्लाह की इताअत से हट तो नहीं जाते, इनकी बातों को पूरा करने के लिए तुम अल्लाह रसूल की बातों को तो नहीं तोड़ देते, इनमें मशगूल होके इनमें बिजी होके तुम अल्लाह ताला के दीन से फारिग तो नहीं हो जाते। यकीन जाने ये मैं आपको, ये एडमिन को बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। जब हम लोगों को बुलाते हैं ना, एक छोटी मिसाल है ये, सिर्फ एक कुरान की तरफ बुलाने की मिसाल, बाकी चीजों में भी ऐसे ही है, लेकिन सिर्फ आप कहेंगे पता नहीं आज इसी टॉपिक को लेकर बैठ गई, लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। जब लोग को बुलाया जाता है ना, तो उनके पास जब वो उजर देते हैं, जो लोग उनके पास ये दो उजर सबसे कॉमन है, यहाँ तो ये बच्चे छोटे हैं, बच्चों की मसरूफियत, बच्चों को यहाँ ले जाना होता है, बच्चों को उनकी ये क्या गेम्स हैं उनके ऊपर ले जाना है, उनके स्कूल से पिकअप करना है, उनको घर लाना है, उनको फलाना करना है, ये करना है, हम तो नहीं कर सकते। या दूसरा होता है मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है, मेरा फलां काम है, ये प्रोफेशंस होते हैं उनके, ये दो चीजें हैं। कोई भी नहीं ये कहता जी मैं आराम से घर में बैठी हूँ लेकिन मैं फिर नहीं आ सकती, ऐसे नहीं कोई कहता। सबसे ज्यादा ये दो चीजें आजमाइश बनती हैं कि इंसान इनके साथ इतने बखेड़े खुद ऐड कर लेता है, खुद ऐड करता है खुद, ये खुद बखेड़े नहीं है, इंसान खुद ऐड करता है, इतनी सारी चीजें इनके अंदर शामिल कर लेता है कि उसके बाद फिर वो उन्हीं के अंदर बिजी इतना हो जाता है। अब बिजी तो जाहिर होंगे जब उनके साथ इतनी चीजें खुद ही शुरू कर ली, एक जॉब थी उसके साथ दूसरी भी शुरू करते, अब वीकेंड पे भी ओवर टाइम लगा ली, एक बिजनेस था अब एक से दूसरी दुकान भी बना ली। कभी इंसान ये नहीं सोचता कि नहीं ये इनाफ है बस इसके बाद में, कभी इंसान बच्चों के साथ ये नहीं सोचता कोई बात नहीं अगर बच्चा रो रहा है उसकी कोई जिद नहीं मैं पूरी कर रही तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई क्यामत नहीं आ गई, अल्लाह ना नाराज हो बस, कोई बात नहीं है, अगर बच्चों की ये चीज नहीं भी हुई तो कोई मसला नहीं है, इधर दीन का काम है उसकी लिए मैं टाइम दे रही हूँ, बच्चों का ये मुतालबा नहीं भी पूरा हुआ तो कोई बात नहीं। नहीं हम कहते हैं उनके मुंह से निकली हुई बात हम कैसे ना पूरी करें, बच्चे का दिल टूट जाएगा, और कुरान को टाइम मिलता नहीं मिलता कोई बात नहीं, नमाज पढ़ने का वक्त मिलता है या नहीं मिलता कोई मसला नहीं, मतलब इनकी शादियों के लिए देखे ना मुझे रात तक जागना पड़ता है, वक्त का मैं कितना भी जिया करती रहूं उसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं देखे ये नमाजों में बड़ा टाइम लग जाता है, तहज्जुद पढ़ने के लिए रात को उठना पड़ता है, वो रातों को शादियों के लिए उठ रहे हैं, उनकी तैयारियों के लिए उठे रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये औलाद है और ये माल है, ये इंसान को बखील भी बना देती है, बुजदिल भी बना देती है, इनके अंदर मशगूल होके इंसान जो है ना बहुत सारे अल्लाह ताला के हकूक, उसकी जो इबादात और जो दीन ने आपके ऊपर फराइज आयद किए हैं उनको भूल जाता है। तो इसलिए इंसान ठीक है, इन चीजों की मोहब्बत है इंसान के दिल में, और ये एक मतलब इंसान की कमजोरी है, हम ये नहीं कह सकते कि इनको उठा के फेंक दें, अब क्या करें, अब हम बच्चों को ही ना देखें, अब क्या, नहीं मैंने कहा ना ये चीजें इंसान के लिए फितना आजमाइश ऐसी भी बन सकती हैं कि अल्लाह से दूर कर दें, यही चीजें हैं जो इंसान के लिए सदका जारिया भी बन सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफा हजरत बुरैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुतबा दे रहे थे कि हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, उन्होंने सुर्ख कमीजें पहनी हुई थी,
वो चलते हुए लड़खड़ा रहे थे। तो बच्चे भागते आते हैं तो कभी अनबैलेंस से हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, उनको उठाया और अपने सामने बिठा लिया। फिर आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने सच फरमाया है कि तुम्हारे माल और औलाद ये तुम्हारे लिए फितना है। तो मैंने इन दोनों बच्चों को चलते हुए लड़खड़ाते हुए देखा, तो फिर मेरे से सब्र नहीं हो सका, हत्ता कि मैं अपने जो खुतबा था उसको छोड़ के और इन बच्चों को उठा लिया। तिर्मिज़ी में, अबू दाऊद में, नसाई में। तो ये तो एक मतलब छोटा सा एक एक्शन था। बड़ी बड़ी चीजें हम भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, उनको तोड़ते हैं। ये कि हमारे बच्चों का बस ये, या तो इनका मुस्तकबिल बनाने के लिए भी होता है, हराम है, लूट खसूट है, लोगों के जायदादें मारी नहीं है, किसी तरह के हमारे बच्चों को मिल जाए, अल्लाह हू अकबर। तो इसलिए ये हैं, इनकी मोहब्बत भी है, लेकिन असल बात ये कि जिसके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की होगी ना, तो ये फिर चीजें नीचे होंगी। और जब इन चीजों की मोहब्बत इतनी हो जाती है, कई औरतें देखें अच्छी भली कुरान पढ़ रही होती हैं, अब हमें जॉब मिल गई, अब नहीं हम आ सकते, तो क्या फितना बन गया ना वो। कईयों के पहले औलाद नहीं थी, अब औलाद जब से हुई है तो वो सब चीज ही छोड़ छाड़ के बैठ गई। क्या करें, बच्चे रात को सोने नहीं देते, रात को तंग करते हैं, ये होता है, तो अब हम तो सुबह उठ ही नहीं सकते। तो वो इम्तिहान बन गए ना ये। वअन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, तुम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला के पास कितना बड़ा अजर है। तो ये अजरे अजीम भूल के तुम, कि अल्लाह कितना बड़ा अजर दे सकता है, वो भूल के तुम इनमें ही लग गए। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत तो अल्लाह की होनी चाहिए। ये एक असर है, एक यानी एक कॉल है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्ने आदम मुझे ढूंढ, तू मुझे पा लेगा, और मुझे पा लेना तमाम चीजों को पा लेना, और मेरा गुम हो जाना यानी मेरे मुझे लूज कर देना, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, तमाम चीजों को लूज कर देना, मैं तेरी तमाम चीजों से ज्यादा तेरी मोहब्बत का हकदार हूं। सुभान अल्लाह, चाहे औलाद है चाहे कुछ है, लेकिन ठीक है उनकी मोहब्बत अपनी जगह है, मगर कभी वो अल्लाह की मोहब्बत से आगे ना बढ़ जाए। एक एक अल्लाह का हुक्म हमें इतना प्यारा होना चाहिए कि जान से ज्यादा अजीज, इसको कैसे तोड़ दूं। बच्चों तुम्हारा दिल टूटे तो टूटे, हुआ ना हदीस के तीन चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर होंगी उसने ईमान की मिठास पा ली, द स्वीटनेस ऑफ ईमान। ईमान की भी अपनी स्वीटनेस है, वो उसको मिल गई। और वो क्या है उनमें से एक चीज, कि अल्लाह और उसका रसूल उसे हर चीज से ज्यादा महबूब है, हर चीज से ज्यादा। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इन तत्तकू, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगी, किसका, लोगों का नहीं, अल्लाह का, अल्लाह का डर अगर तुम्हारे दिल में होगा, अल्लाह को राजी करने की लगन होगी। तकवा मैंने आपको क्या बताया था, तकवा क्या है, क्या चीज होती है तकवा, यानी तकवा ये है कि इंसान के अंदर ये हर वक्त ये फिक्र हो ना कि हाय कहीं मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो जाए, ये फिक्र हर वक्त लगी रहे, ये सोच हो उसके अंदर कोई ऐसी गलती ना हो जाए मुझसे, और हर वक्त ये जहन के अंदर हो ये आए कोई निकी का काम मुझसे रह ना जाए, जिस चीज के अंदर अल्लाह खुश होता है ना मुझसे रह ना जाए, ये ना हो कि मैं इसको ना कर पाऊं, ये ना हो मुझसे लूज हो जाए, ये काम भी कर लूं ये काम भी कर लूं, उसके हरीस हो वो। क्यों? इसलिए कि मेरा अल्लाह इससे खुश होता है ना। तो यानी हर वक्त नेकी को करने की तड़प उसके अंदर है, और हर वक्त गुनाह से बचने की उसके अंदर एक फिक्र है मौजूद, तो समझ ली मुत्तकी है। अगर आपके अंदर ये है तो आपके अंदर तकवा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मगर तकवा के लेवल्स हैं, तो किसी में थोड़ा हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर ये सोच है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह। और तकवा दिल में होता है। तो अगर आप मुत्तकी हैं तो क्या फरमाया, इसमें तकवा है अल्लाह का, उसको तीन तीन चीजें अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताई कि जिसको मिलेगी, थ्री रिवॉर्ड्स हैं उसके लिए। अब सुने ये रिवॉर्ड, अगर तकवा है तो क्या मिलेगा? यजअलकुम फुरकाना, अल्लाह तुम्हारे लिए फुरकान तुम्हें दे देगा। एक तो था ना यौमुल फुरकान, बदर 17 रमजान, दैट्स यौमुल फुरकान। लेकिन यहां पे बात हो रही है उस फुरकान की जो अंदर की बसीरत है, यानी अल्लाह ताला फर्क फर्क करना कि ये चीज बुरी है, ये चीज अच्छी है, ये नेकी है, ये गुनाह है, ये नूर अता फरमा देगा। आप खुद फैसला कर सकेंगे कि नहीं ये गलत है, ये बातिल है। ठीक है, कि यानी इंसान के अंदर अल्लाह ताला वो मीजान खुद रख देता है, अल्लाह ताला उसको खुद भी समझा देता है, उसको खुद सुझाई देने लगता है। ठीक है, तो ये फुरकान ये भी मिल जाना अल्लाह ताला के इनामात में से एक इनाम है, ये उसको मिलता है जिसमें तकवा आ जाता है। ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना। अल्लाह हम तुझसे हिदायत मांगते हैं और तकवा मांगते हैं। अल्लाह अल्लाह हमें मुत्तकीन में शामिल करते हैं। तो अल्लाह ताला उसको फुरकान अता फरमा देते हैं। और देखें, जब इंसान के अंदर बुराई और भलाई की तमीज़ करना उसको आ जाए ना, तो फिर वो उससे बचना भी शुरू करता है। जब जब इंसान को पता ही नहीं है क्या चीज़ भली है क्या चीज़ बुरी है, तो फिर क्या वो बचेगा। और आप देखें सुभान अल्लाह, ये जो कुरान है ना, ये भी तकवा को बूस्ट करता है, तकवा पैदा करता है और तकवा को बढ़ाता है। और आप गौर करें, जब से आप कुरान की तरफ आए होंगे, यकीनन अगर आप वाकई दिल से सुनते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि अब अपनी गलतियां नजर आने लगी? फुरकान आ गया ना, फर्क आ गया, तमीज होने लगी है, ये नहीं नहीं ये बुरा है, ये नहीं मैंने करना है ना। फिर आपको खुद पता चलने लगा है कि ये नेकी का मौका है, ये नहीं जाने देना। तो ये इसका मतलब दिल जाग गया, दिल में तकवा आया है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको फुरकान अता फरमा दिया, फुरकान। और इससे पहले कोई फर्क ही नहीं पड़ा करता था, जब कुरान नहीं पढ़ते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, वही बातें होती थी, वही मजलिसें होती थी, वही पहनना ओढ़ना होता था, वही पार्टी टाइम होता था, वही सब चीजें होती थी। लेकिन अब फुरकान आ गया, अब बदल गया जाविया, देखने का एंगल बदला है, अब पहचान हो गई है। वयुकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा। और सही आप बुराई को भी कहते हैं और मुसीबत को भी कहते हैं, ये याद रखें। तो इसका एक माना ये है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर कर देगा, यानी तुम्हें बख्श देगा, और आगे भी आ रहा है वो यग़फिर लकुम, और बख्श देगा तुमको। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये माना करें कि सही आ का माना मुसीबत का, तो देखें कि अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबतें तुमसे दूर कर देगा। कहाँ की मुसीबतें? दुनिया की भी और आखरत की भी। सुभान अल्लाह, ये रिवॉर्ड है, ये इनाम है अल्लाह की तरफ से उनके लिए जो मुत्तकी होते हैं। मुत्तकीन का तो आखरत में बताया गया ना कि जन्नत मुत्तकीन के लिए ही है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला दुनिया की भी मुसीबतें दूर फरमा देगा और आखरत की भी मुसीबतें। तो तकवा के तो बड़े फ़ायदे हैं, और अल्लाह बख्श भी देगा, क्योंकि मुत्तकीन से भी तो गुनाह हो जाते हैं, मुत्तकीन से भी तो गलतियाँ हो जाती हैं। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फजल वाला है, उसकी फजल की तो कोई इंतहा ही नहीं। देखो इंसान छोटा सभी काम करता है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का फजल कितना होता है कि उससे कितनी ज्यादा टाइम्स बढ़ा के उसको अता फरमाता है, कितना गुना बढ़ा के उसको देता है। दुनिया में वो छोटी सी चीज कर लेता है, और देखो बशारते उसको कितनी बड़ी चीजों की मिल जाती है। अब जन्नत जो है वो किसी भी अमल की कीमत तो नहीं हो सकती, कि भाई ये इसने कोई जान भी दे दे तो उसकी कीमत भी जन्नत नहीं बन सकती। लेकिन अल्लाह ताला की वो जुल फजल अज़ीम है ना, बहुत बड़ा फजल करने वाला है।
जितना इंसान डिजर्व भी नहीं करता उससे ज्यादा अता करता है। कोई और ऐसा नहीं कर सकता, यकीन जाने। बहुत टाइम में इस बात को सोचती हूँ, बहुत दफा मैं रियलाइज करती हूँ कि छोटा सा काम किया ना और अल्लाह ताला की अता इतनी बड़ी हुई है। मैं सोचती हूँ अल्लाह सिर्फ तू ही कर सकता है, तू तो जुल्फतले अज़ीम है। क्योंकि इंसान जब आपको कोई बदला भी देने लगे ना, थोड़ा गिन के देते हैं, इसने इतना तो नहीं किया जितना इसको देना चाहिए, इतना तो नहीं इसको मिलना चाहिए, ये तो इतना डिजर्व नहीं करता। लेकिन अल्लाह ताला जब नवाजता है ना, तो हमारी छोटी सी भी कुर्बानी होती है, छोटी सी चीज भी हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं, छोटी सी भी नेकी करते हैं, इतने बड़े बड़े अल्लाह ताला इनामात से नवाजता है। और आखरत में तो वो जब जाके नजर आएंगे तो और भी ज्यादा इस चीज का एहसास होगा, अल्लाह तो कितना बड़ा फजल करने वाला है। वह इद यम कुरुबिकल्लदीन कफरू, और जब मकर कर रहे थे, चालें चल रहे थे तेरे साथ वो लोग जिन्होंने कुफर किया। और ये भी इज कह के क्या याद कराया गया, वो वाला टाइम जो मक्की पीरियड था, जिसके अंदर जो लास्ट का टाइम था ना, उसके अंदर क्या हुआ था, काफिर लोग इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हो गए थे कि उन्होंने मंसूबा बनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जिसके अंदर के उन्होंने ये सोचा दारुल नदवा में बैठ के, आपको पता है कि जिसमें उन्होंने ये सोचा कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया जाए। अब उसमें इबलीस भी शामिल हुआ था इंसानी शक्ल में, एक बुजुर्ग सा बन के। उन्होंने कहा तुम कौन हो, क्या लगा मैं नजद का एक शेख हूँ, और मुझे पता चला कि तुम किसी बहुत अहम बात के ऊपर मशवरा कर रहे हो, तो मैं भी आ गया हूँ ताकि मैं भी कोई कोई खैर ख्वाही में कोई कमी ना रह जाए, मैं भी कोई राय दे सकूँ। तो आखिर जब वो आपस में मशवरे करने लगे ना कि हम क्या करें, तो उस वक्त उनकी एक राय ये थी लियुस बीतू का, कि वो कैद कर लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन्होंने एक सोचा कि भाई इनको ऐसा करते हैं, इनको कैद में डाल देते हैं। फिर उन्होंने कहा भाई कैद में अगर डालेंगे तो ये शैतान इबलीस बदबख्त, उसने ये कहा कि नहीं अगर कैद में डालेंगे तो फिर तो ये सही नहीं होगा, इसलिए कि इनके जो जो साथी हैं ये जो है ये बहुत पावरफुल हो जाएंगे, ये फिर पावरफुल होके फिर इनको फिर इनके आके इनको छुड़ाने के लिए आ जाएंगे और तुम लोगों से आके लड़ेंगे और उसको छुड़ा के ले जाएंगे, और ये भी हो सकता है अपने साथ और भी सपोर्टर ले आए और बहुत जबरदस्त तुमसे इंतकाम ले। तो सब ने कहा कि ये तो वाकई बड़ी अच्छी इसने बात की है, वाकई ये तो हमें नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे ने कहा कि इनको जिला वतन कर दो, यहां से निकाल दो, फिर तो निकल जाएंगे तो फिर हमें इनका कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसने कहा कि नहीं ये भी ठीक नहीं है, तुम नहीं देखते कि इनकी बातें कैसी हैं, इनकी जुबान कितनी मीठी है, दिलों पे ये कब्जा कर लेती हैं, हर कोई इनकी बातों का गर्विदा हो जाता है। अगर तुमने ऐसा किया ना, ये तो अपनी जुबान से और इससे इतने साथी अपने और पैदा कर लेंगे, फिर तो ये तुम्हारी तरफ आएंगे ना, तो फिर तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा, तो ये तुम सबको मार देंगे, तो इसलिए ये सेफ नहीं है। फिर एक ने कहा अबू जहल नहीं कहा जाता है, उसने कहा कि एक राय मेरी भी सुन लो, मेरा ख्याल ये है कि तुम सबके जहन में भी ये बात ना आई होगी, और वो ये है कि हर कबीले का एक नौजवान जो बहादुर है और वो है उसको चुन लो और ये सब मिल जाए और फिर ये जाके अपनी तलवारों से इनके टुकड़े कर दे। फिर तो उसके कबीले के लोग यानी बनू हाशिम, उनको हिम्मत नहीं होगी कि कुरैश के सारे कबीलों से लड़ें, क्योंकि हर कबीले का एक एक नौजवान उसमें शरीक हो, तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ कि सास तो होगा नहीं, दियत ही होगी, तो हम दियत दे के अपनी जान छुड़ा लेंगे और इनका भी खात्मा हो जाएगा। अब इबलीस तो उछल पड़ा, कहने लगा वल्लाही बस ये राय सबसे बेस्ट है, इसके सिवा कोई और बात तो समझ नहीं आती, बस यही करो और इस किस्से को खत्म करो। तो ये उन्होंने फैसला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए जिब्राईल अलैहि सलाम आए और आपको बता दिया कि आज रात आप अपने घर में अपने बिस्तर पे ना सोएं, काफिरों ने आपके खिलाफ ये बात कर ली है। तो आपने यही किया, आपको हिजरत का हुक्म हो गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पे हजरत अली को सुलाया, और देखें ये कितनी रिस्की बात है ना, कितनी रिस्की बात है
अब देखे दुश्मन आ रहा है और उस बिस्तर पे आके उनको भी तो कुछ कर सकते थे ना, उनको मतलब नुकसान दे सकते थे। लेकिन सुभान अल्लाह के हजरत अली फरमाते हैं कि उस दिन से ज्यादा, उस रात से ज्यादा मीठी नींद नहीं मुझे कभी आई कि क्यों, और मैं बेधड़क होके सोया। क्या वजह थी? वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सुबह को अमानतें दे के, लोगों की अमानतें दे के और फिर मेरी तरफ आ जाना। तो वो कहते हैं कि मुझे तो यकीन था कि मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा, बाकी रातों में तो ये हो सकता था कि किसी रात सोऊं तो सुबह उठूं ही नहीं, लेकिन इस रात में मुझे यकीन था कि मैं सुबह तक जिंदा रहने वाला हूं। ये होता है ना यकीन अल्लाह की बात पे, रसूल की बात पे, सुभान अल्लाह। वरना तो कोई सी रात भी इंसान सोए कहां, उसको यकीन तो नहीं है सुबह उठना है कि नहीं। तो लेकिन और आप अमानतों के पास की बात सोचें कि इतनी, इन्हीं दुश्मनों की अमानतें थी ना, इन्हीं काफरों की अमानतें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, उनका भी इस कदर लिहाज था, ये नहीं सोचा कि चलो ये तो आप दुश्मन है, इनकी अमानतें इनको देने की क्या जरूरत है, इनके तो साथ ही लेके जानी चाहिए ताकि इनको नुकसान हो, और वैसे भी हमें भी इस वक्त जरूरत होगी, रास्ते में पता नहीं क्या क्या जरूरतें पड़े तो हमें जरूरत भी है तो क्यों ना हम ले चलें। नहीं, असद अली को लुटा के गए हैं कि आप यहाँ पे रहें और इनकी अमानतें सुपुर्द करके आएंगे आप, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने दरवाजे से निकले और देखा है तो आगे काफिर खड़े में घेरा डाल के, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन की आयात पढ़ी है और उनकी तरफ एक मुट्ठी में मट्टी और कंकर लेकर फेंके हैं जो उनकी आंखों में पड़ गए, वो कुछ देख ही ना सके कि आप निकल गए। तो वो याद करें अल्लाह ताला का ये एहसान कि कैसे ये आपके खिलाफ इतनी तदबीरें कर रहे थे, प्लानिंग्स कर रहे थे बैठे हुए दारो नदवा में कि इनको कैद कर लें या कत्ल कर लें या इनको निकाल दें। वही अमकुरूना वही अमकुरुल्लाह, वो चालें चल रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था। अल्लाह हू अकबर, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेस्ट है ऑफ प्लानर्स, अल्लाह बेस्ट तदबीर करने वाला है। कि देखें उन्होंने तदबीरें की कि हम ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, सारी उनकी तदबीरें खाक में मिल गई। उन्होंने सारी रात घेरे में लिए रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को, और सुबह उठ के देखा तो वहां पे कोई भी नहीं, और आप उनके सामने निकल रहे हैं और अल्लाह ताला ने उनको कैसे अंधा कर दिया। और फिर देखें कि वो उन्होंने पीछा किया, जब पीछा किया है कि वो पैरों के निशान देखते हुए आपके पीछे उस पहाड़ तक पहुंच गए, गारे सौर तक पहुंच के जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली भी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ, और उस गार के मुंह तक आ गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कैसा अंधा कर दिया कि वो आपको देख ही ना सके। तो ये सुभान अल्लाह सब चीजें नहीं बताती कि देखो अल्लाह की प्लानिंग कैसी होती है, अल्लाह चाहे तो दुश्मनों के मुंह से निकाल के किसी को ले जाए। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, वो जब उनके सामने हमारी आयात तिलावत की जाती तो आगे से क्या कहते हैं, हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें ना तो हम भी इस तरह की बातें कर लें। खास तौर पर नजर बिन हारिस के बारे में आता है कि वो बड़ी ऐसी बातें करता था, हालांकि जुर्रत किसी की भी नहीं हुई थ्रू आउट कि वो इस कुरान जैसा कोई कलाम ला सके, ताकि कुरान में इनको चैलेंज किया गया, एक सूरत ही बना के लाओ इसकी जैसी एक सूरत ले आओ, तो एक सूरत भी नहीं ला सके, लेकिन बातें कितनी है कि लो ये कौन सी ऐसी बातें, सुन लिया हमने ये बातें, अगर हम चाहें ना हम भी ऐसी ले आए, ये कौन सी बड़ी बात है। इन हादा इल्ला असातीरुल अवलीन, क्या है ये, पुराने लोगों की बातें ही है ना, इनमें पुराने लोगों के किस्से कहानियां ही है ना, तो फिर हम भी ऐसे ला सकते हैं। नजर बिन हारिस गया और वो फारिस से जाके वो रुस्तम अस्फंदियार इसके किस्से लेकर आ गया, फिर सिंगर्स लेकर आया मुगनिया, वो आके लोगों को गाने सुनाती थी, जो जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने के लिए लोगों को सुनाने के लिए बैठते थे ना, तो ये भी अपनी मजलिस लगा के बैठ जाता था, लोगों को किस्से कहते कि लोग इनके पास जाके कुरान ना सुने और ये मेरे ड्रामे सुने, उस वक्त तो ड्रामे देखने वाले नहीं थे ना, सुनने वाले ड्रामे होते थे, तो ये मेरे ड्रामे फिल्में ये मेरी देखें यानी वो वाले किस्से सुने, फिर वो लोगों से फख्र से कहता था बताओ अब मेरी बातें ज्यादा अच्छी हैं या मोहम्मद का कलाम ज्यादा अच्छा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये खबीस बदर के दिन कैद होके लाया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इसकी गर्दन मारी गई थी। ये उन कैदियों में से है जिनको कत्ल किया गया था, उकबा बिन अबी मुआइद और नजर बिन हारिस, और ये एक और काफिर था जिनकी जिनको कैद में इनको कत्ल किया गया था। وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ। और खुद ऐसे ढीठ थे कि धड़ल्ले से कहते थे, ए अल्लाह अगर ये हक है ना तो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे आसमान से, औ अवेतिना बिअज़ाबिन अलीम, या हमारे ऊपर दर्दनाक अजाब ले आ। अबू जहल ने भी ये बात की थी, कहते हैं नजर बिन हारिस ने भी ऐसी बातें की थी कि अबू जहल ने तो बदर पे जाने से पहले की थी ना, उसने ये दुआ मांगी थी। और अल्लाहुम्मा कह के, ए अल्लाह, इसका मतलब ये है कि ये लोग अल्लाह ताला पर ईमान रखते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे, मगर एक ग्रोह वो है जिसके पास सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, और दूसरा ग्रोह वो है जो कहता तो है अल्लाह लेकिन साथ लात है, मनात है, उज्जा है, ये है वो है, सारी देवियां है वो। ये फर्क था क्या? तो ऐसा नहीं है कि उनको अल्लाह का पता नहीं था, ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह को जानते ही नहीं थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी अल्लाह को पुकारा ही नहीं था। आप शायद ये सोचते हैं कि वो बस बुतों की पूजा करते थे और बस बुतों, नहीं वो अल्लाह से भी मांगते थे। ये देख लें आप, अल्लाहुम्मा आया अल्लाह, यानी अल्लाह फैसला कर दिया। ये पहले भी बात आई है ना कि अगर ये हक है ना तो हमारे ऊपर फिर पत्थर बरसा दे, बजाय ये कहने के अल्लाह अगर ये हक है तो हमें हक की पहचान दे दे, अल्लाह हमें हक का रास्ता दिखा दे, हक की कबूलियत हमारे अंदर पैदा फरमा दे, तौफीक दे दे, ये दुआ करनी चाहिए ना। लेकिन वो क्या दुआएं आप कर रहे हैं अपने ऊपर अजाब की। देखो ये भी इंसान की एक बड़ी बदबख्ती होती है कि वो बाज दफा अपने लिए अजाब मांग रहा होता है। कहते हैं बाज लोग ऐसी बातें जाहिलाना करते हैं, अगर ऐसा ऐसा है तो अल्लाह करे कि मेरा मुंह ऐसा हो जाए और मैं ऐसे हो जाऊं और मैं जिंदा ना रहूं और मैं ऐसे ना हूं, तो फिर उसके बाद अपने लिए ही मांग रहे होते हैं इस तरह की बदबख्तियां। मिर्जा कादियानी के साथ भी तो ऐसा हुआ था ना, और फिर उसके बाद कैसे वो उसको मौत आई। तो अपने लिए अगर इंसान ये मांगे ना कि या अल्लाह जो भी हक है उस रास्ते को मुझे दिखा दे और मुझे तौफीक दे उस पे चलने की, ये दुआ बेहतर है बजाय ये कहने के अल्लाह अगर ये हक है तो फिर मेरे ऊपर अजाब दे दे। वमा कान अल्लाह लियुअज्जिबहुम, ये अजाब तो मांगते हैं कि हमारे ऊपर अजाब आ जाए, लेकिन अल्लाह ताला नहीं अजाब देगा इनको। वा अंत फीहिम, इस हाल में कि आप इनमें मौजूद हैं, जब तक कोई नबी किसी कौम में होता है अल्लाह ताला उस कौम को अजाब नहीं देता। आपने देखा है कि पिछली कौमों के अंदर से भी नबी को निकाला गया और फिर उसके बाद उन कौमों के ऊपर अजाब आए, नबी की मौजूदगी में अब अजाब नहीं आता। तो इसलिए यहां पे आप इस आयत में देखेंगे दो चीजें, दो चीजें कौन सी हैं वो दो चीजें अगर आपसे पूछा जाए कि जो अल्लाह के अजाब के आगे आड़ बन जाती हैं, रोक लेती हैं अल्लाह ताला के अजाब को, तो वो कौन सी चीजें हैं? तो उनमें से एक चीज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी। जब तक आप उसमें उनमें रहे उनके ऊपर कोई इस तरह की चीज नहीं आई, चाहे वो कहते भी रहे अल्लाह हमारे पर अजाब भेज दे, अल्लाह हमारे पर अजाब भेज दे, अगर ये हक पे हैं तो हमारे पर अजाब भेज दे, नहीं आया अजाब, कैसे आता अल्लाह के रसूल उनमें। और दूसरी चीज, वमा कान अल्लाह मुअज्जिबहुम वहुम यस्तगफिरून, और अल्लाह ताला नहीं अजाब देता, नहीं अजाब देने वाला उनको जो कि इस्तिग़फ़ार करते हैं, यानी वो लोग जो इस्तिग़फ़ार करते हैं उनको भी अल्लाह ताला अजाब नहीं देता। जब तक कोई कौम ऐसी है जिसमें लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अल्लाह के अजाब से बचे रहेंगे, जब लोग इस्तिग़फ़ार छोड़ देते हैं तो फिर अजाब आने लगते हैं। इसीलिए देखें वो लमा वगैरह से आप सुनते होंगे ना कि लोग इज्तमाही तौबा करें, लोग इस्तगफार करें ताकि ये अजाब टल जाए, लोग इस्तगफार करें, लोग सुनते ही नहीं, वो सोचते हैं ये ऐसे ही बातें हैं। हालांकि ये देखें ये बात सही है,
कि वाकई इस्तग़फ़ार जो है ना अल्लाह के अज़ाबों से इंसान को बचा लेती है। अज़ाब आया है तो टल जाता है, अज़ाब से निकाल लेती है। तो इस्तग़फ़ार इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए इस्तग़फ़ार को नहीं कभी छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है कि उसका बंदा आजिज़ होके उसके आगे गिर पड़े और उससे मांगे कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। अब यहां पे कौन लोग इस्तग़फ़ार कर रहे थे? देखिए, इनमें वो भी मुसलमान हो सकते हैं जो के अब जिन्होंने अपना इस्लाम नहीं डिक्लेयर किया होता, या जो ज़ईफ़ कमज़ोर मुसलमान थे वो तो इस्तग़फ़ार करते ही थे ना, वो तो इसी बस्ती में रहते थे, मक्का की बस्ती में। तो अल्लाह ताला ने जब लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हो तो फिर उनके ऊपर नहीं वो अज़ाब भेजता। दूसरी ये भी हो सकता है कि जैसे कि आपको मालूम है कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला को तो मानते थे, पुकारते थे, तो जब वो तवाफ करते थे तो उसके बाद लबैक अल्लाहुम्मा लबैक तो कहते थे, उसके बाद कहते थे अल्लाह लबैक अल्लाहुम्मा लबैक ला शरीक अलक, ये कह के उसके बाद कहते थे अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं मगर वो तेरे शरीक हैं जिनको तूने खुद ही अपना शरीक बनाया, इस तरह की बात कह के फिर कहते थे गुफरानक गुफरानक गुफरानक, इस तरह से कहते थे अल्लाह हम तुझसे बख्शिश मांगते हैं, इस्तगफार करते हैं इस्तगफार करते हैं, तो इस्तगफार भी कर रहे थे साथ। तो इसलिए यानी खुद भी वो इस्तगफार करने वाले थे, तो ये बात भी हो सकती है। तो जो मुसलमान भी थे जो इस्तगफार करते थे और खुद भी इस्तगफार करते थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला फिर अजाब नहीं भेजता। ये कह तो रहे हैं ना कि हमारे पर अजाब आ जाए, तो अल्लाह कैसे अजाब भेजे जब इनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये इस्तगफार करते हैं। अब एक बात यहाँ पे और भी है कि अब इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से जा चुके, इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक अमान है और वो है इस्तगफार। जब तक लोग इस्तगफार करते रहेंगे, इसकी कसरत करते रहेंगे, अल्लाह से बख्शिश मांगते रहेंगे, मुसीबतें टलती रहेंगी, बचे रहेंगे, और इस्तग़फ़ार छोड़ देंगे तो फिर अज़ाब ही आएंगे। जो हदीस में आता है ना, जो इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, उसके गमों को दूर कर देता है, और नंबर 3 उसको वहां से रिस्क देता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। इस्तग़फ़ार की बड़ी अहमियत है। लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमें इस्तग़फ़ार करने का कह रहे हैं, तो क्या मैं इतनी गुनाहगार हूं कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि इस्तग़फ़ार करें? यानी उनका कोई मसला होता है, कोई मुसीबत होती है, तो फिर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें। ये आयत करीमा भी क्या है, इस्तग़फ़ार ही है ना। तो फिर वो ये कभी ना सोचे मैंने कौन सा ऐसे गुनाह कर दिए हैं कि मुझे इस्तग़फ़ार का सोल्यूशन बताया जा रहा है। हर एक को जरूरत है कि वो तौबा करे, और इस्तग़फ़ार क्या है, पलट आना अल्लाह की तरफ। अतूबू इलल्लाहि जमीआ, लोगों तुम सब के सब अल्लाह के आगे तौबा इस्तग़फ़ार करो, पलट आओ। जिन कौमों को अजाबों का डर हो, जिन कौमों को अपनी इकोनॉमी संभालनी हो, जिन कौमों के हालात खराब हो रहे हैं, वो इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते? सलूशन दिया हुआ कुरान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पे 2 अमन मेरी उम्मत के लिए उतरे हैं, एक मेरी मौजूदगी, दूसरे उनका इस्तग़फ़ार करना। बस जब मैं चला जाऊंगा तो इस्तग़फार कयामत तक के लिए इनमें छोड़ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, कयामत तक के लिए ये इस्तग़फार का की अमान हमारे पास है, ये अमान है हमारे लिए, ये शील्ड है हमारे लिए। क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था कि अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक तेरे बंदों के जिस्म में रूह है मैं उनको बहकाता ही रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे भी मेरे जलाल और मेरी बुजुर्गी की कसम, जब तक वो मुझसे इस्तग़फार मांगते रहेंगे मैं भी उनको बख्शता रहूंगा। तो इसलिए इस्तग़फार को लाजिम पकड़ना, इस्तग़फार को लाजिम पकड़ें। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 दफा इस्तग़फार करते थे, तो इस्तग़फिरुल्लाह इस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह मग़फिर अल्लाह मग़फिर वरहम अल्लाह मग़फिर वरहम, मतलब ऐसे कहते रहे, उठते बैठते कहते रहे, कोई लंबी चौड़ी भी नहीं इस्तग़फिर इस्तग़फार के कलिमात आते, तो इस्तग़फिरुल्लाह 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 इतना भी तो कह सकते हैं। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, तो अच्छा, अब उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर अल्लाह अजाब भेज दे अगर ये हक से, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अजाब नहीं भेजता जब लोगों में नबी मौजूद हो या फिर वो इस्तगफार करते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि ये अजाब के हकदार नहीं। कैसे हो सकता है, या इनमें ऐसा है क्या कि इनको अजाब ना आए? क्योंकि उनको बड़ा ये होता था ना, देखा हमने अजाब मांगा था, कुछ भी नहीं अजाब आया, हमारे ऊपर तो कुछ नहीं आया, कोई हमें मसला नहीं हुआ। तो क्या है इनको कि ना अल्लाह अजाब करे इनको, वहम या सुदून आनी मस्जिद हराम, जबकि ये मस्जिद हराम से रोकते हैं लोगों को, वमा कानू अउलिया, और हालांकि ये इसके मुतवल्ली नहीं है, इसके मुतवल्ली बन के बैठे हुए हैं। मस्जिद हराम को तो बनाने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, जो शिर्क से इतने बेजार थे, उनकी तो सारी जिंदगी शिर्क से बेजारी की है, ये यहाँ पे शिर्क करने लगे, तो ये इसके मजावर बन के, इसके खिदमत गुजार बन के बैठे हुए हैं। हालांकि इन औलिया मुत्तकून, इसके तो मुतवल्ली, इसके केयर टेकर इस मस्जिद के, तो वो हैं जो तकवा वाले हैं। इसका मतलब है जिन लोगों के अंदर तकवा होगा वो अल्लाह के घर का इंतजाम संभालने के अहल होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर मस्जिद की खिदमत करना चाहे तो उसके लिए पहली शर्त क्या है? तकवा, उसके अंदर तकवा होना चाहिए, खुदा खौफी होनी चाहिए। वलाकिन अक्सर हम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं, इस चीज की परवाह ही नहीं करते, नहीं जानते, इस हकीकत को ही नहीं समझते। तो समझ आ गई कि मस्जिद की खदमत करने के लिए क्या चाहिए? तकवा। ये नहीं कि जेब में पैसे कितने हैं, कितने बड़े ओहदे पे है, कितना बड़ा डॉक्टर है, कितना बड़ा डोनेशन दे सकता है। तो हम ही मस्जिद के मुतवल्ली हैं, हम ही इसके खिदमत गुजार हैं। तो उनमें देखें खौफे खुदा तो था नहीं, सिर्फ एक बस जाहिरी दीनदारी का कहते तो थे, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से हैं, लेकिन उससे बिल्कुल उलट कर रहे थे। तो ये तो इस काबिल नहीं है कि इसके मुतवल्ली बने। वमा कहना सलातु हम इंदल बैती इल्ला मुकाम तस्दिया, इनकी नमाज तो अल्लाह के घर के पास कैसी होती थी? सीटियां और तालियां, जैसे सीटियां बजाते बजाते तालीम, देखो तो हो सकता है वो तराने भी पढ़ते हैं, वल्ला वो आलम। मगर यानी ये जो जैसे एक म्यूजिकल प्रोसेशन चल रहा है, इस तरह तवाफ करते थे, इस तरह अल्लाह के घर के पास नमाजें पढ़ते थे, यानी क्या किस किस्म की थी? अच्छा आप देखें, सुबहान अल्लाह, इस्लाम एक सिर्फ ऐसा मजहब है जिसकी इबादात में इस कदर डिग्निटी है, ऑनर है, पीस है। आप जिसकी भी उठा के देख लें, आप देख लें चर्चेस की, वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और गा रहे हैं, बस संडेज को उनकी क्या सर्विस होती है, उसमें तराने ही पड़ रहे होते हैं कुछ। अच्छा फिर आप हिंदुओं का देख लें, उनके भी भजन है, ऐसे भजन बजाएंगे कि, लेकिन इस्लाम की इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारी इबादत पुरसकून है, खामोशी है उनके अंदर, गिरिया जारी, अल्लाह से बात करना, शोर शराबा हंगामा नहीं है। अब ये अलग बात है कि बदकिस्मती से हमारे अंदर भी ऐसे लोग शामिल हो गए जिन्होंने तालियां पीटना शुरू कर दी और उसको इबादत समझना शुरू कर दिया, और कह दिया ये कवालियां जो हैं ये भी कोई इबादत ही हैं, हम कवालियां सुनते हैं, बड़ी इबादत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, म्यूजिक के ऊपर नाते कर ली। अच्छा फिर वो क्या है, डांसिंग दरवेश, कि वो रूमी डांस शुरू कर दिए, गोल गोल घूम रहे हैं, धमाल डाल रहे हैं, वो उर्स, वो जो जो क्या उर्स उर्स है, उर्स है, या दरगाहों पे जाके धमाल कितने पड़ रहे होते हैं, औरतों ने भी बाल खोले हुए हैं, वो भी गोल घूमने लगी। ये किस किस्म का इस्लाम है? ये किस किस्म का हाल चढ़ जाता है इनको, जो कभी सहाबात को नहीं चढ़ा था? और ये किस किस्म का धमाल है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा करके दिखाया ना, सहाबा ने कभी, ना तबई ने, कोई किधर से निकाल के ले आए? और ये इसको इस्लाम समझते, वो रूमी टोपी पहन के, वो फ्रॉक पहने हुए और गोल घूमते जा रहे हैं। मुझे बड़ा जबरदस्त इनका, देखो इसी तरह और भी कई जगहों के ऊपर ऐसी चीजें, आप खास तौर पे ये दरगाहों वगैरह पे बहुत देखेंगे जिसमें ये इस तरह के तमाशे हो रहे होते, कवालियों का तो एक समां बंधा होता है। तो ये दीन एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है, कि हमारी इबादत कोई एंटरटेनमेंट नहीं है जिसमें कोई बड़ी रंगीनी होनी चाहिए, कोई ऐसी होनी चाहिए, तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, बहुत सोबर है। आप इनमें ऐसी कोई चीज नहीं देखेंगे। तो उनकी नमाजें ऐसी होके रह गई थी, और आज वो एक अस्तगफिरुल्लाह, किसी ने मुझे भेजा कि रबीउल अव्वल में वो जुलूस निकाल रहे हैं और उसमें बाकायदा बैंड लेके जा रहे हैं बाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने बाजों गाजों को तोड़ने के लिए, मौसीकी के आदले तोड़ने के लिए भेजा गया हूँ, आया हूँ मैं, और ये मौसीकी के आलात लेके धूमधाम से उनका ही मीलाद मना रहे हैं। मतलब अकल देखें जरा। तो ये तो मुशरिकीन के तरीके थे, सीटियां और तालियां बजाना और इस किस्म की चीजें करना। फजूकुल आदाब अभी मा कुंतुम तकफुरून, तो चखो अजाब को इस वजह से कि तुमने कुफर किया, तुम कुफर करते हो। ये कौन सा अजाब है? ये बदर में जो इनको अजाब मिला है, इनके 70 मारे गए, 70 कैद हुए, इतने बड़े बड़े सरदार मारे गए हैं, और एक शर्मनाक शिकस्त इनको हुई। तो अल्लाह का अजाब सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं होती, दुनिया में भी रुसवाई, ये भी अल्लाह का अजाब है। अस्तग़फिरुल्लाह। इसी वजह से इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा ये कोई पसंदीदा चीज नहीं है कि तालियां बजा के किसी को प्रेज किया जाए। इसीलिए हमें कहा गया कि जब कोई ऐसी चीज देखें तो फिर आप तकबीर कहें या सुबहान अल्लाह कहें, कोई प्यारी चीज देखें तो इस तरह से कहना चाहिए। इन्नल्लज़ीना कफरू युन्फिकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, बेशक वो लोग जो इन्होंने कुफर किया, ये अपना माल खर्च करते हैं किस लिए, बजाय अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के। इन लोगों का तरीका क्या है? अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए खर्च करते हैं। कैसे इन्होंने रोकने के लिए खर्च किया था? कि ये लोग पहले तो वो जो काफला आया उसके अंदर जितना इनको प्रॉफिट हुआ, जितना कुछ हुआ, इन्होंने कहा ये सारा का सारा हम मुसलमानों के साथ जंग करने के लिए डोनेट करते हैं, सब चैरिटी कर दिया हमने, किसी ने नहीं लिखा। फिर जब अबू जहल भी काफला लेके, वो लश्कर लेके जा रहा था, तो उसके लश्कर के अंदर भी हर एक ने पार्टिसिपेशन की, अपना शेयर डाला। किस लिए तुम डाल रहे हो? ये साजो सामान देना, कुछ ने घोड़े दिए, किसी ने कुछ दिया, हर एक ने अपने घर से किसी ना किसी फर्द को भेजा, या तो साजो सामान में मदद की या अफरादी कुव्वत में इजाफा करने के लिए मदद दी। तो ये सब स्पेंडिंग किस लिए कर रहे हैं? अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए। इसका मतलब ईमान वालों को कैसा होना चाहिए? अल्लाह के रास्ते पे लाने के लिए माल खर्च करना चाहिए, क्योंकि काफिर क्या करता है? अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए माल खर्च करता है। और आज आप देखें दुनिया में अगर किसी रिलीजन में सबसे ज्यादा माल खर्च किया है तो वो क्रिश्चियनिटी ने किया है। आप देखेंगे जिस जगह पे जाके ये अपने कदम जमाते हैं, वहां पर एक हॉस्पिटल, एक स्कूल और एक चर्च बनाते हैं। आप देख लें जितने कैथीड्रल्स हैं, कॉन्वेंट्स हैं हमारे मुल्कों के अंदर, लोग बहुत शौक शौक से अपने बच्चों को वहां पे दाखला दिलाते हैं, लेकिन ये क्रिश्चियन मिशनरी से होते हैं, नंस होती हैं वहां पे, वो होती हैं। खुद देखे हुए हैं हमने पाकिस्तान में, तो कि ऐसे स्कूल्स हैं, फिर वो साथ हॉस्पिटल भी, क्योंकि ये हर एक इंसान की बेसिक नीड्स में, उसको बच्चे को पढ़ाना भी है, तालीम का भी उसका बंदोबस्त हो जाए, उसके बीमारी आती है तो उसको ये भी है कि कोई मेडिकल फैसिलिटी हो। तो ये हर एक इंसान की एक जरूरत है। अब वो जब इतना स्पेंड करते हैं ना, तो इस तरह वो अट्रैक्ट करते हैं अपने दीन की तरफ, और इसमें बहुत सारे लोग मुर्तद हुए हैं, मुर्तद हुए हैं इन्होंने, और क्रिश्चियन हुए हैं, हिंदुओं से भी क्रिश्चियन हुए, मुसलमानों से भी मुर्तद होके उधर गए। ये फैक्ट्स हैं। कई कई गांवों के अंदर गए, कई बहुत ऐसी जगहों के पर जहां पे बस लोग मुसलमान नाम के ही थे सिर्फ, तो उनको तो ना अपने दीन का कुछ पता ही नहीं था, वो बस इनके रास्ते पे चले गए। तो माल खर्च करने से भी आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने दीन की तरफ, याद रखें। इन्होंने खर्च किया और इसका देख लें, आज आप दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मजहब है ये, हालांकि कुछ भी नहीं है इनके पास, आप डिबेट करें तो इनकी कोई बेस नहीं है। तो अगर आप माल खर्च करें और आपके पास हक भी है, तो आप इनसे कहीं ज्यादा बेहतर नतायज हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे माल हमारे दीन के लिए खर्च होते नहीं अक्सर। फसयुन्फिकूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग्लबून, बस अनकरीब वो खर्च करेंगे इसको, फिर हो जाएगा उन पर हसरत का सबब, फिर वो मغلوب किए जाएंगे। यानी वो खर्च करें भी तो ये खर्च करना उनके लिए हसरत होगा, इसलिए कि बाद में जब वो उनको शिकस्त हुई या बाद में जब दीन इस्लाम गालिब आ जाएगा, तो इनको हसरत ही होगी ना कि ये हमने क्या किया, अपना माल भी लुटाया, जाया किया। जो भी माल अल्लाह के रास्ते से रोकने में खर्च होगा वो तो जाया ही है ना, क्योंकि वो इस्लाम का तो कुछ नहीं कर सकते, बिगाड़ नहीं सकते। उल्टा बाद में इनको खुद ही पता चल जाएगा कि इस्लामी हक था, हम क्या करते रहे। यार देखा, कयामत के दिन तो और भी ज्यादा ये चीज सामने आ जाएगी। आमिलतुन नासिबा है ना सूरह गाशिया में, वो अमल कर करके दुनिया में थक गए। आज देखिए इतना दुख होता है कि ये लोग माल भी लुटा रहे हैं, इतनी चीजें भी कर रहे हैं, अपनी जिंदगियां भी लुटाई हुई हैं, लेकिन हासिल क्या है? कुछ भी नहीं। मेहनत कर करके थके हुए चेहरे होंगे उस दिन। वल्लदीन कफरू इला जहन्नम युहशरून, और काफिर जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। लियमीज अल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब, ताकि अल्लाह ताला अलग अलग कर दे ना पाक को पाक से। ये सब क्यों होता है? इसलिए अल्लाह ताला ने किया कि हक और बातिल वाजे हो जाए, खबीस और तय्यिब अलग अलग हो जाए, लोगों को फैसला करने में कोई मुश्किल ना हो कि हमें तो पता ही नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत है। हक और बातिल सामने आ गया, देख लेना अब बदर हुई है, सबको पता चल गया कि हक कौन है, हक पे कौन है और बातिल पे कौन है। तो अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, टाइम टू टाइम ऐसी आजमाइशें, ऐसे हालात अल्लाह ताला लाता रहता है। याद रखिएगा ये बात, अल्लाह ताला लाता रहता है, और आप अपनी जिंदगी में भी देखेंगे तब आप पहचान लीजिएगा कि जिसमें छट जाता है पाक और नापाक, तय्यब और खबीस, छांटी हो जाती है लोगों की। ये अल्लाह का कायदा है हमेशा से, पाक और नापाक अलग अलग हो जाते हैं, नेक अलग हो जाते हैं और कूड़ा करकट अलग हो जाता है। लोग खुद ही फैसले करने लगते हैं ना कि अब हमने किसकी तरफ होना है, किसकी तरफ जाना है, हम किसकी साइड पे हैं। खबीस एक तरफ हो जाते हैं, तय्यब एक तरफ हो जाते हैं। मुझे किसी ने कुछ अरसा पहले कहा था, कहने लगी कि अब ये हो गया है हमारे शहर में, कि जिस भी सिटी का नाम नहीं मैं लेती, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां पे ऐसे हो गया कि या तो लोग बहुत रिलीजियस हैं या फिर लोग बहुत आउट हैं। कहती बीच में जो हमारे जैसे लोग थे, जो दरमियाने दरमियाने चलने वाले थे, इधर को भी हो गए इधर को भी, कहती वो बहुत कम रह गए हैं। या तो लोग बहुत दीन की तरफ इसकी तरफ है, और या फिर लोग बिल्कुल ही आपे से बाहर हैं, लीड किस्म की क्लास में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही आपे से बाहर। तो वाकई ऐसा होता है, कभी किसी कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, कभी कोई वाकया ऐसा हो जाता है कि उसके बाद लोग खुद ही फैसला कर लेते हैं कि अब तो हम नाम भी बदल लेंगे, और अब तो हाल हुलिये भी बदल लेंगे, और अब इस्लाम के जैसे मुसलमान नजर आना भी हमारा हमें गवारा नहीं है, तो अब तो हमें कोई समझे भी ना कि हम मुसलमान। किसने फैसला किया? अल्लाह ताला ऐसे हालात लाएगा, इंडिविजुअल्स की लाइफ में भी आते हैं, इज्तमाही तौर पर भी आते हैं। अभी सर तय्यब अलग अलग हो जाएगा। सूरह आले इमरान में हम पढ़ चुके हैं ना, मा कान अल्लाहु लियज़र मोमिनीन अला मा अन्तुम अलैह हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन अत्तय्यिब। अल्लाह ताला ऐसे नहीं रहने देगा, जिस हालत में तुम हो तुम सोचते हमेशा ऐसे ही रहोगे गड़मड़ से, अल्लाह ताला अलग अलग कर देगा। दुनिया में अलग हो जाता है, मुमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, तो कयामत के दिन होगा ना कि अलग अलग हो जाओ ए गुनाहगारो, आज तुम नेकोकारों से अलग हो जाओ, ये तो वहां पे होगा। लेकिन दुनिया में भी अल्लाह अलग कर देता है, मोमिनों के आमाल अलग हो जाते हैं दूसरों के अलग, उनकी जिंदगियां साफ नजर आ रही होती हैं कि ये जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी वाली है, ये नाफरमानी वाली है। वह यजअल खबीस बादहु अला बाद, और अल्लाह ताला नापाक को बास के ऊपर बास को फयर कुमा हो, बास के ऊपर बास कर देगा, फयर कुमा हो जमियान, फिर ऐसे पाइल अप कर दिया जाएगा उनको, स्टैक एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये कब रखते हैं आप एक के ऊपर एक? आप कूड़ा जब जमा करते हैं तो क्या होता है? कूड़े को एक के ऊपर एक, के ऊपर एक लगा के फिर उसके बाद उसके ऊपर उस ढेरी के ऊपर आग लगा देते हैं ना, ये भी इसी तरह, ये खबीस है, कूड़ा करकट है। तो अल्लाह ताला ये इनको अलग अलग करके फिर इनको एक जगह एक के ऊपर एक कर दिया, फैया जा लहू फी जहन्नम, फिर डाल दे उसको जहन्नम। इसलिए अल्लाह ताला अलग अलग कर देता है। उलाएक हुमुल खासिरून, ये लोग बड़े खसारा पाने वाले हैं। ये अपने आप प्रूव कर देते हैं इसी दुनिया में कि हम तो जहन्नम के काबिल हैं। पता है आपको, इस दुनिया में इंसान अपने फैसलों से खुद प्रूव करता है, ताकि कयामत के दिन वो ये कह ना सके कि
अल्लाह मेरे ऊपर तो जुल्म हो गया, मैं कैसे जहन्नम में चला गया। नहीं, तुम ये देखो तुम्हारी जिंदगी कैसी, तुम नापाक में से थे, तुमने वो जिंदगी गुजारी जो डिसोबीडियंस की थी, तुम बागी थे अल्लाह के, तो उसका अंजाम तो जहन्नम ही है। तो इंसान प्रूव करता है, खुद अपने एक्शन से प्रूव करता है। तो अल्लाह ऐसे हालात भेजता है, ऐसे टेस्ट भेज देता है, ऐसी चीजें भेज देता है, ऐसी जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसी जिंदगी में टेस्ट आते हैं कि इंसान खुद साबित कर देता है कि वो जन्नत के काबिल है या जहन्नम के। कुल लिल्लदीन कफरू इन यंतहू युग्फर लहुम मा कद सलफ। आप देखें इतनी ज्यादा होप देने वाली आयत है इस तरह के लोगों को भी, जो कि काफिर थे, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ चढ़ाइयां की, मुखालफतें की, उनको भी अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाते कुल, ए नबी आप कह दें, किनको कह दें, लिल्लदीन कफरू, नेकों की नहीं बात हो रही है, जिन्होंने कुफर किया, इन यंतहु अगर वो बाज आ जाए, युग्फर लहुम मा कद सलफ, तो अल्लाह ताला माफ कर देगा वो जो पहले गुजरा हुआ। आपको पता है बाज आने का मतलब क्या, इस्लाम ले आओ, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया, चांस दिया, तौबा कर लो। तो फिर जो तौबा कर लोगे, अपनी इसलाह करोगे, तो बुखारी की हदीस में आता है कि अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। लेकिन अगर इंसान फिर से वही बुराइयां करना शुरू कर देता है, देखिए एक है ना कि इंसान इस्लाम लाया तो उसके पिछले सारे जो गुनाह थे माफ हो गए, और नहीं इस्लाम ला के नेकियां की तो फिर सारे, अगर वो मसलन इस्लाम लाता है लेकिन उसके बाद फिर वो वही काम करना शुरू कर देता है जो पहले थे, उन्हीं गुनाहों में दोबारा पड़ जाता है, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन वो पिछले गुनाहों का भी हिसाब लेगा, फिर वो भी हरे हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम अगर बताया गया कि इनको बता दो, अगर ये बाज आ जाते हैं, रुक जाते हैं दीन की मुखालफत से, तौबा कर लेते हैं, इस्लाम ले आते हैं, अल्लाह माफ करने वाला है, वो माफ कर देगा। अब इसमें ना बड़े से बड़े मुजरिम के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है कि तुमने जितनी भी इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, रसूल की मुखालफत, रसूल का इनकार, वो सामने हैं, उनको जिंदगी में देख रहे हैं फिर उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उनसे वही सुन रहे हैं फिर उनकी मुखालफत कर रहे हैं, ऐसे मुजरिमों के लिए भी अल्लाह ताला ने चांस रखा है। तो बाकी जो आज भी दुनिया के अंदर कोई कितना भी गुनाहगार है, वो कैसे कह सकता है कि मेरे पास कोई चांस नहीं है? तो इसलिए हर एक को अल्लाह ताला चांस देता है, तो अल्लाह फिर माफ कर देगा, जो पिछला गुजर चुका ना सबके ऊपर कलम फेर दिया जाएगा। वाइन याउदू, लेकिन अगर वो पलटेंगे, फकद मदद सुन्नतुल अव्वलीन, तो फिर गुजर चुकी है पहले लोगों की भी तरीके, तुम्हें पता ही है फिर पहले लोगों के तरीके, पढ़े हैं ना आपने सूरह आराफ में 6 कौमों के बारे में आपने पढ़ा है कि उनके साथ क्या गुजरी थी। तो फिर अगर ये पलटेंगे, वही दोबारा करेंगे, यही मुखालफत करेंगे, यही तरीके रखेंगे, तो फिर इनको पता है कि अल्लाह का अजाब फिर आता है तो क्या होता है, फिर बताने की जरूरत नहीं, फिर देख लो, फिर तुम्हें भी पता है कि पिछली कौमों के साथ क्या हो। वकातिलुहुम हत्ता ला तकुना फितनतुन, और लड़ो इनसे जब तक के ना खत्म हो जाए फितना, ना रहे फितना। अब ये क्या बात है कि अगर वो बाज नहीं आते और फिर वो यही करते रहते हैं, तो जब तक फितना खत्म ना हो जाए आप उनके साथ लड़ते रहें, यानी बदर कोई आखिरी जंग नहीं है, अगर ये फिर पलटेंगे तो मुसलमानों तुम भी फिर डट जाना। और फितना क्या, अब देखिए सूरह बकरा में बिल्कुल ऐसी आया था, हम पहले पढ़ चुके हैं, फितना परसिक्यूशन, यानी ये देखिए ये जमीन अल्लाह की है, इसके अंदर अल्लाह ताला ही की इबादत होनी चाहिए, मगर कुछ लोग खुद तो करते नहीं है लेकिन दूसरों को भी नहीं करने देना, ये क्यों अल्लाह की इबादत करें, ये क्यों दीन इस्लाम पे चले, अपनी फ्री विल से कोई दीन इस्लाम को चूज ना कर सके, या उसके ऊपर जुल्म किया जाए कि जो है तुमने ये दीन नहीं अपनाना, ये सब चीजें क्या है, फितना है, कि किसी को दीन पे चलने नहीं देना, किसी को दीन कबूल नहीं करने देना, प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं देना, ये सब फितने की बातें हैं। और अल्लाह के बंदों को आजाद अल्लाह ने किया है कि वो इस्लाम को कबूल करें, इस फितने के खात्मे के लिए फिर कोशिश करनी है। और आज भी दुनिया में ये फितना है, आज भी आप सोचते हैं ना कि नहीं है, हालात बहुत बदल गए हैं, पुराने जमानों में लोग ऐसे किया करते थे, बादशाह खास तौर पे किया करते थे कि जैसे फिरौन ने किया, मुझे ही खुदा मानो, उस वक्त के बादशाह ही उनके खुदा होते थे। तो लेकिन आज भी है, और एक मुल्क है जो आज भी लोगों को 1 मिलियन मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में रख के क्या कर रहा है। हाँ, उनकी क्लींजिंग की जा रही है, उनके दिमाग ठीक किए जा रहे हैं, सीधे किए जा रहे हैं। और वो क्या है कि तुम सलाम तक नहीं कर सकते, इस्लामी नाम नहीं रख सकते, इस्लाम को छोड़ दो, इनका दिमाग हम ठीक करेंगे। वहां पे रख के उनके दिमाग ठीक कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि क्या हो रहा है दुनिया में इस वक्त, सबसे बड़ा ये वो है कि जो फितने का, यानी बाकी जगहों पे भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, लेकिन रिलीजियस परसिक्यूशन खास तौर पे सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, उनको इस्लाम से हटाने के लिए कि किया जा रहा है, वो एक मुल्क में इस वक्त भी जा रही है। और इस्लाम आपको ये नहीं कहता है कि वैसे ही किसी के ऊपर, कोई काफिर है तो चलो जी जाके उसके साथ लड़ना शुरू कर दो, सिर्फ ऐसे ही उसके ऊपर चढ़ाई कर दो क्योंकि वो काफिर है, नहीं। हाँ, मगर ये कहा गया कि कोई फितना क्रिएट करे या कोई दीन पे ऐसी किसी जगह पे जुल्म करने लगे जहां पे वो मुसलमानों को सता रहा है, जो कोई करीबी बस्ती है वहां पे औरतों और बच्चे की चीखें तुम्हें सुनाई दे रही हैं, तो फिर तुम्हें लड़ना है। तब ये देखें, आपको ये सूरह निसा आयत नंबर 75 में आप इस चीज को देख चुके हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 90 में देख चुके हैं। मकातिलू फी सबीलल्लाह अल्लज़ीना युकातिलूनकुम, इसमें पता है आपको कि जो तुमसे लड़े तो फिर तुम भी उनसे लड़ो। वयकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन सारा का सारा अल्लाह के लिए हो जाए, फिर उस वक्त तक लड़ते रहना। तो ऐसा गलबा इस्लाम चाहता है, फिर पीछे नहीं हटना, फिर डट जाना। फइनिन्तहु फइन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर, अगर फिर वो बाज आ जाए, रुक जाए, फितना करने से रुक जाए, नीचे होके रहना कबूल कर लें, तो अल्लाह ताला जो वो अमल करते हैं उसको देखने वाला है। वइन तवल्लहु, अगर वो मुंह मोड़ जाए, बाज नहीं आते, तो फालम, यानी अगर वो फिर भी घुमंड में हैं अपनी दौलत के, या इसलिए कि वो बहुत पावरफुल हैं और वो नहीं मानेंगे, तो मुसलमानों तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है। अगर वो बाज नहीं आता तो तुम्हारा दोस्त तो अल्लाह है, तुम्हारे साथ तो अल्लाह है, जैसे सूरह मोहम्मद में भी है ना, अल्लाहु मौलाना वला मौला लहुम, हमारा तो मौला अल्लाह है और उनका कोई मौला नहीं, हमें क्या परवाह है, फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। निअमल मौला व निअमन नसीर, जबकि बेस्ट मौला, वली, दोस्त, मददगार, सपोर्टर, हिमायती अल्लाह है, उससे अच्छा कौन मौला हो सकता है। जिसका मौला अल्लाह बन जाए उसको किसी की क्या जरूरत। व निअमन नसीर, और उससे वो कितना अच्छा मददगार है, उससे बेहतर मददगार और कौन हो सकता है। जिसके साथ अल्लाह हो जाए उसको तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो बहुत प्यारी आयतें, और बहुत ईमान को बूस्ट कर देने वाली आयतें, और बहुत कुछ सीखने वाली आयतें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.